लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे आर्त याचना करते हैं कि रोबोटिक्स तथा कृत्रिम बुद्धिमता की प्रगति सदैव मानव जाति की सेवा में हो। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लेबन्स के जीवन एवं छटनागपुर मिशन पर एक चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रोताओ, इन दिनों हम छटनागपुर के प्रेरित फादर लेबन्स की जीवनी और छटनागपुर मिशन पर प्रकाश डाल रहे हैं। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने अथक परिश्रम से छटनागपुर में ख्रिस्त की ज्योति जलाई और यहाँ के पीड़ित एवं उपेक्षित लोगों को जीने का रास्ता दिखलाया। साथ ही समाज में न्याय, समानता और मानव प्रतिष्ठा के मूल्यों को बढ़ावा दिया, जिसके कारण आदिवासी अपनी दयनीय स्थिति से ऊपर उठ पाए। फादर लेबन्स की इस विरासत को हमारे समाज में बनाए रखना आज भी लाभदायक होगा। पिछले सप्ताह हमने सुना था कि फादर लेबन्स के मिशन के प्रति समर्पण से उनके साथी मिशनरी, प्रचारक और स्थानीय आदिवासी अत्यंत प्रभावित थे, जिससे मिशन कार्य आसानी से आगे बढ़ रहा था। आज हम सुनेंगे कि फादर लेबन्स की ख्याति न केवल छटनागपुर में बढ़ रही थी बल्कि चारों ओर फैल चुकी थी और उन्हें सभी अधिकारियों का समर्थन मिल रहा था। यहाँ तक कि रोम में संत पापा को भी इस सुदूर क्षेत्र में प्रस्फुटित हो रहे मिशन कार्य की पूरी जानकारी मिल चुकी थी। इस पर उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए अपना आशीर्वाद भी प्रदान किया था। छटनागपुर में फादर लेबन्स की कई बड़ी योजनाएं थीं और उनके उत्साह एवं उनकी ऊर्जा उन योजनाओं के अनुरूप थी। उनके सह मिशनरी उनके उदाहरणों से संदिग्ध थे। जब उन्हें महसूस हुआ कि वे सफलता के शिखर पर हैं और उनकी कड़ी मेहनत को आधिकारिक रूप से सराहना एवं पहचान प्राप्त हुई, तब वे बड़े प्रयासों के लिए भी तैयार हो गए। उस समय के भारत के प्रेरितिक प्रतिनिधि मॉन्सिन्योर अलियार्दी के द्वारा संत पापा लियो 13वें को भी इस बड़ी मिशनरी सफलता की जानकारी मिली और उन्होंने मिशन के लिए अपना प्रेरितिक आशीर्वाद भेजा। जेसुइट सोसाइटी के सुपीरियर जनरल ने यह कहते हुए शुभकामनाएं दी। पश्चिम बंगाल में प्रथम जेसुइटों का महान कार्य पुनः जागृत हो गया है। उन दिनों के कार्य जब एक पुरोहित प्रेरितों की तरह यीशु ख्रिस्त का प्रचार करते थे और हजारों लोगों को बपतिस्मा देते थे। सुपीरियर जनरल ने अपनी खुशी एवं समर्थन के चिन्ह स्वरूप 10,000 यूरोपीय रुपये भेजे, जिसमें कार्डिनल फैजलिन यीशु समाजी ने 5,000 रुपये जोड़ दिए। जेसुइट सुपीरियर जनरल ने छटनागपुर में फादरों की योजनाओं को भी अनुमोदन दिया, जिसके द्वारा उन्हें अधिक प्रोत्साहन मिला। कलकत्ता के महाधर्मदर्श पॉल गोथल्स एवं मिशन सुपीरियर फादर ग्रोजा ने भी मिशन को बढ़ावा दिया। फादर ग्रोजा का मिशन के लिए पूर्ण समर्थन था, जिनकी उम्मीद थी कि समय के साथ छटनागपुर में ख्रिस्तियों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। महाधर्मदर्श गोथल्स शांत और चतुर व्यक्ति थे, उन्हें किसी तरह की हड़बड़ी नहीं थी। उन्हें भी फादर लेबन्स छटनागपुर मिशन की लगातार और विस्तृत जानकारी देते थे। मिशन कार्य में फादर लेबन्स को उनका भी समर्थन प्राप्त था। आत्माओं की मुक्ति एक कृपा का कार्य है, जिसे प्रार्थना और त्याग तपस्या जैसे अलौकिक साधनों पर आधारित होना चाहिए। इसके लिए मनरेसा हाउस के सुपीरियर जनरल फादर मोटेट ने बेल्जियम के सभी कॉन्वेंटों में एक पत्र भेजकर प्रार्थना की मांग की कि निष्कलंक गर्भागमन और पौत्र हृदय की मध्यस्थता द्वारा 1889 में छटनागपुर की कलीसिया में 50,000 नए ख्रिस्ते हो जाएं। छटनागपुर में मिशन कोई अव्यवस्थित कार्य नहीं था। ईश्वर की कृपा पर भरोसा रखते हुए फादरों ने अपना प्रयास और त्याग तपस्या कभी नहीं छोड़ा। रांची में तैयारी व्यवहारिक और योजनाबद्ध थी। फादरों के दौरे के लिए 4 घोड़े खरीदे गए थे, किंतु मिशन में विस्तार के लिए एक बड़ी समस्या थी, मिशनरियों की कमी। नवंबर 1888 में 2 नए मिशनरियों ने लोहरदगा मिशन के 5 फादरों को बल प्रदान किया। 35 वर्षीय फादर कानोय और 57 वर्षीय फादर फ्रैंकिन को कर्रा भेजा गया। इस मिशन की स्थापना फादर लेबन्स ने सबसे बाद में की थी। उन्होंने अपने साथ कुछ राशि भी लाई थी, किंतु मिशन में अब भी पैसे और पुरोहितों की जरूरत थी। फादर लेबन्स ने अपने प्रोविंशियल को पत्र लिखकर उनसे आग्रह किया। उन्होंने इस प्रकार लिखा, हमारे करीब आधे क्रिस्ते और प्रचारक ने कभी किसी मिशनरी को नहीं देखा है और न ही वे कभी देख पाएंगे, क्योंकि हम उनके पास नहीं जा पाते हैं। हम इतने लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हैं। हम उन्हें न तो कोई गिरजाघर दे सकते हैं और न ही स्थायी प्रचारक। हम बहुत लाचार हैं। दरकिनार कर दिए गए गांवों की सूची उपलब्ध कराना आवश्यक नहीं है जो फिर से गैर ख्रिस्ते बन रहे हैं अथवा दूसरे धर्मों को अपना चुके हैं या छोड़कर जाने वाले हैं। हम में से कोई भी इससे ज्यादा काम नहीं कर सकता। हम रात और दिन काम कर रहे हैं। इस साल हमें बहुत अधिक पैसे और व्यक्ति की आवश्यकता है ताकि हम पूरे छोटा नागपुर को जीत सकें। आंदोलन जारी है, किंतु कितना दिन जारी रहेगा? दूसरी ओर यदि हम अपने कामों को उत्साहपूर्वक करते जाएं, तो न केवल छोटा नागपुर किंतु मध्य भारत को भी प्रेरित करेंगे, जिसमें कुछ वर्षों में अच्छे कैथोलिकों की संख्या हजारों हो जाएंगी। अतः हम अपनी शक्ति को एक साथ लाएं और छोटा नागपुर के लिए अधिक लोगों को प्रदान करें। जितना अधिक संभव हो उतना प्रदान करें ताकि हमारे लोगों के लिए उच्च विद्यालय खोला जा सके, साथ ही मिशन स्थलों की संख्या भी बढ़ाई जा सके। एक सप्ताह बाद फादर लेबन्स ने यह सोचते हुए कि प्रोविंशियल के लिए उनका यह पत्र कहीं बहरे कानों के लिए न मिल जाए, अतः उन्होंने रोम के अपने सुपीरियर जनरल को भी पत्र लिखा। छोटा नागपुर में आपके अति दीन बच्चे आपके आशीर्वाद की याचना करते और निवेदन करते हैं कि आप हमारी अर्जी सुने। हम यहाँ सिर्फ 6 मिशनरी पुरोहित हैं जो 1000 गांव के करीब 50,000 आत्माओं के बीच रहते हैं। हमारे आधे लोगों ने कभी किसी पुरोहित को नहीं देखा है, न ही बपतिस्मा लिया है, न धर्म शिक्षा सुनी है, न उनके लिए कोई प्रचारक है और न ही गिरजाघर। वे निश्चय ही अक्रिस्ते बन जाएंगे यदि हम उनकी देखभाल न करें। इस तरह हम देखते हैं कि हमारे पूर्वजों ने पौत्र आत्मा की आवाज सुनकर किस तरह भीड़ के भीड़ ख्रिस्ते धर्म को अपनाया। यह फादर लेबन्स और अन्य मिशनरियों के त्याग एवं तपस्या का फल है, जिसके लिए उन्हें प्रोत्साहन भी मिले और निराशा की भावना का भी सामना करना पड़ा। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लेबन्स के जीवन एवं मिशन पर एक चर्चा सुन रहे थे। इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे और अब लीजिए आज का भक्ति गीत, उसके बाद चेतना जागरण।
महिमा तेरी गाता रहूं मैं सदा, सर्वदा तेरा ही यश मैं गाता रहूं, गाता रहूं, गाता रहूं। महिमा तेरी गाता रहूं मैं सदा, सर्वदा तेरा ही यश मैं गाता रहूं, गाता रहूं, गाता रहूं।
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटक परवरिश। लेखिका है दुर्गेश नंदिनी चौधरी। श्रोताओं, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, फिर भी स्त्री भ्रूण हत्या हमारे समाज का कड़वा सच है। कुछ लोग मानते हैं कि वंश चलाने के लिए लड़के का होना आवश्यक है। कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं कि बेटी तो पराया धन है, बुढ़ापे में बेटा ही देखेगा। जो महिला बेटा पैदा नहीं कर पाती, उसे समाज, परिवार और विशेषकर सास की खरी खोटी रोज ही सुनने को मिलती है। पर कुछ दंपति ऐसा भी सोचते हैं कि संतान तो ईश्वर की सबसे महान और अनमोल देन है। बेटा हो या बेटी, उसे अच्छे संस्कार देना, एक अच्छा इंसान बनाना ही माता पिता का परम कर्तव्य है। बेटा और बेटी दोनों के परवरिश में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। आज हर क्षेत्र में लड़कियां कामयाब हासिल कर रही हैं। कहीं भी उसका स्त्री होना आड़े नहीं आता और फिर हर इंसान अपने सुकर्मों से नाम और यश कमाता है। आज वंश चलाने के लिए लड़के की कामना करने वाले पुराण पंथी लोगों को अपने सोच बदलने की आवश्यकता है। आशा है आज का नाटक इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं दुर्गेश नंदिनी चौधरी का लिखा नाटक परवरिश।
ला 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 ला, मेरे घर आई एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार। ला 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 ला।
अरे चुप कर, पहले से ही एक लड़की की माँ बन गई है, अब दूसरी को क्यों बुला रही है? अरे गाना है तो वो गाना, बड़ा नथ खट है रे, है? या फिर कृष्ण कन्हैया का वोगा, बनवारी रे जीने का सहारा चाहिए। अरे पोता चाहिए, पोता कह दे रही हूँ। बड़ी मन्नत के बाद तेरा पैर भारी हुआ है बहू, शिवानी 15 साल की हो गई है बेटा। इतने वर्षों के बाद अब तो बस बनवारी से एक ही आस है, पोता दे दे बस गंगा नहा लूंगी। हे भगवान, क्या जमाना आया है, घोर कलयुग आ गया। लड़कियों की इज्जत लोग बख्श नहीं रहे। अरे छोटी छोटी बच्चियों पर घोत लगा रहे हैं और ये महारानी परी को बुला रही है। पता नहीं इसकी अक्ल पर पत्थर पड़े हैं। क्या जमाना आ गया है भगवान। हे बनवारी, कहाँ जाऊँ।
अरे भाई, क्या हुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? इन दिनों बहू को खुश रखोगी तो अच्छा रहेगा, वो प्रसन्न रहेगी तो संतान अच्छी आएगी। शिवानी के समय कितना खुश रखती थी, भूल गई क्या?
भूल गई क्या? अरे याद है, सब याद है, कैसे भूलूंगी भला। सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया था, मेरी मेहनत पर सारा पानी फेर दिया था इसने जब पता चला लड़की हुई है।
अरे भाई, क्या बकवास कर रही हो, इतनी प्यारी बच्ची है, कितनी होनहार है। अरे देखना, हमारे खानदान का नाम रोशन करेगी, हमेशा टॉप पर रहती है। अरे यदि दूसरी भी पोती हुई ना तो देखना, वो भी बहुत होशियार होगी। जमाना एडवांस हो गया है भाई। क्यों बेटा?
बंद करो अपनी बकवास, मुझे तो पोता चाहिए, वरना ठीक नहीं होगा कह दे रही हूँ।
अरे अरे अरे, क्या हुआ माँ, क्या ठीक नहीं होगा? अरे आपके भी तो 4-4 बेटियां हैं और सभी खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। यदि मुझे बेटी हो गई तो क्या मुझे भी कोसेंगी माँ? मेरी सासू माँ ने तो ये कहा है, बेटा बेटा हो या बेटी, स्वस्थ होना चाहिए। क्या माँ, आजकल तो बेटियां भी कमाल कर रही हैं। आप भाभी को परेशान मत किया करो,
बड़ी आई भौजाई की पैरवी करने वाली। अरे तुझे तो पहली बार डिलीवरी होगी, इसलिए तेरी सास भली बन रही है, पर हमारे यहाँ तो ये आखिरी मौका है, बड़ी मुश्किल से ये दिन आया है। अरे तू क्या जानेगी पोते की चाह, जब दादी बनेगी ना तब पता चलेगा। इस बुरे समय में जहाँ छोटी छोटी कन्याएं सुरक्षित नहीं है, वहाँ तो भगवान हर घर में बेटा ही दे। हे भनवारी, क्या हो गया है मेरे घर के लोगों को?
अरे भाई भाग्यवान, यदि ऐसा होने लगेगा तो और समस्याएं बढ़ेगी। अरे बच्चों की परवरिश तो मायने रखती है, और फिर जिनकी सोच ही खराब हो तो कोई क्या कर सकता है, क्या उनकी माँ बहने नहीं है? जरूरत तो ये है कि लड़कियों की सुरक्षा बढ़ाई जाए, उन्हें बचपन से ही समझाइश दी जाए कि गैर मर्दों और लड़कों से दूर रहें, उन पर जरा भी भरोसा ना करें। ये नहीं कि लड़की पैदा ना हो ऐसी सोच को बढ़ावा दिया जाए। समस्या है तो हल भी हमें ही ढूंढना है भाई।
बिल्कुल ठीक माँ, पिताजी एकदम सही बोल रहे हैं। देखो लड़का हुआ और लायक नहीं हुआ तब भी तो खानदान का नाम डूबेगा ना। अरे माँ, सभी माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे लायक हो, पर जो लायक नहीं होते तो क्या उनके माँ बाप को ये कोसना चाहिए कि भगवान लड़का पैदा मत करना जो कुल का नाम खराब कर दे? तकलीफ बराबर है, ऐसे में तो बेटियां जन्म लेना ही छोड़ देगी, तो फिर बेटे कहाँ से आएंगे? हाँ, है ना पिताजी?
क्या हुआ मधु, बड़ी देर से वाद विवाद सुन रहा हूँ। माँ पोता चाहती है और आप सभी ने माँ को नाराज कर दिया, है ना माँ?
हाँ बेटा, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? चल तू ही बता, पोता चाहिए, इसमें मेरी क्या गलती है बेटा, कोई गलत चाह कर रही हूँ क्या?
अरे पर माँ, हमारे चाहने से क्या होता है, जो तुम्हारे बनवारी चाहेंगे वही तो होगा ना। फिर पोता हो या पोती, बस स्वस्थ हो, अरे हम उसे समझदार और होशियार बना देंगे ना।
तू भी इन लोगों का साथ दे रहा है बेटा, है? क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, जैसी हरी इच्छा, कौन सुनता है इस घर में अब मेरी, बूढ़ी जो हो चली हूँ।
अरे भाई अजी, कैसी बातें कर रही हो तुम्हारी तो सभी सुनते हैं, वो तो बहस छिड़ गई थी। बस सोच बदलो विवेक की माँ, जमाना यदि खराब चल रहा है तो जिम्मेदार भी हम ही लोग हैं। विश्वास रखो अपने बनवारी पर भाई, सब कुशल करेंगे, फिर चाहे पोती हो या पोता हो।
हाँ पिताजी, माँ के बनवारी ने भी तो दुशासन और दुर्योधन को सबक सिखाया था। अरे इतिहास साक्षी है, जब जब विकृत मानसिकता चरम पर पहुंची तो उसका अंत भी हुआ, फिर समय काल कोई सा भी रहा हो। और पिताजी ये तो कलयुग है भाई, यदि दुष्टता सर उठाएगी तो बेटी भी चंडी बन जाएगी। हाँ
बिल्कुल सही कह रही है बेटी तुम्हारी भी।
माँ जी माँ जी,
हे भगवान, ये बहू को जल्दी हॉस्पिटल ले चलो, लगता है उसकी तबीयत बिगड़ रही है। हमारी बातों से घबरा गई हमारी बच्ची। बनवारी तेरी मर्जी, पोता हो या पोती, मेरी बहू को अच्छा रखना प्रभु। चल बेटा घबरा मत, हा जो भी हो हमें मंजूर है, तो हिम्मत हार मत बस बेटा, तू चले चल, चले चल।
अब तो जरूर तुम्हारे बनवारी तुम्हारी सुनेंगे। भाग्यवान, बदल दी ना सोच हमारी आज की बहस ने। सचमुच चलो भाई, देर मत करो, जल्दी करो, डॉक्टर को फोन करो, बहू की डिलीवरी का समय आ गया है।
अरे बधाई हो बधाई दादी जी, मुंह मीठा करवाइए, पोता हुआ है पोता। बस एक बात का ध्यान रखना, इसकी सोच में कभी फर्क मत आने देना। परवरिश में लड़का है लड़का ये भाव मत आने देना, ताकि वह समझदार इंसान बन सके, बहु बेटियों की इज्जत का मान रख सके।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हमें ही अपने बेटों की परवरिश पर ध्यान देना उतना ही जरूरी है जितना हम बेटियों की परवरिश पर देते हैं। लड़का है कहकर बेफिक्र न हो, उसकी भी हद बांधे, उसे भी रोके टोके, सही गलत की समझ बचपन से ही दें, बहु बेटियों की इज्जत का पाठ पढ़ाएं, फिर देखिए कैसे नहीं समाज की सोच बदलती है।
हाँ डॉक्टर साहब, सोच का दायरा तो हमें ही बढ़ाना होगा, बेटियों के प्रति और बेटों के प्रति सीमित करना होगा, ताकि वो अपनी हद पार ना कर सके। क्यों जी?
माँ अब तो खुश हो, तुम्हारे बनवारी ने सुन ली, लेकिन चुनौती है पोते को हद में रखने की, जिम्मेदारी सौंपी है। बेटियों से ज्यादा कठिन होती है बेटों की परवरिश आज के युग में, क्योंकि बेटियां असरदार हैं, दमदार हैं बेटों से।
हाँ भाई हाँ।
बेटा विवेक जा जल्दी बहू के पास, देख तो सब ठीक है ना। अरे पोते का मुंह तो हमने देख लिया, मेरी बहू का भी तो देखे, अरे उसी की कृपा से तो ये दिन दिखाया है हमारे बनवारी ने। वाकई बेटियां असरदार है। अरे मधु बेटा, तू सही बोल रही थी, बेटा हो या बेटी स्वस्थ होना चाहिए, आखिर बेटियां ही तो बेटों को दुनिया दिखलाती है। यदि बेटियों की परवरिश में भेदभाव आया तो बेटे बिगड़े हैं ही, सोच बदलने की जरूरत है। बस दोनों की परवरिश बराबर होना चाहिए, कैसे समाज में फिर दुष्कर्म होगा। जब दोनों को बराबरी का दर्जा देंगे तो बेटे भी बिगड़े नहीं होंगे। सचमुच भाई, समय को हम ही बदल सकते हैं। क्यों विवेक के पिताजी, सही बोल रही हूँ ना, समस्या का हल हमें ही ढूंढना है, हा? उससे पीछा छुड़ाने के लिए गलत सोच को जन्म नहीं देना है। बनवारी तेरी जैसी मर्जी, मैंने तो अपने पोते की परवरिश बेटियों जैसी ही करनी है, ताकि वो नेक इंसान बने। सही कह रही हूँ ना।
जय हो माँ के बनवारी की।
परवरिश। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटक सुना। इस नाटक के कलाकार थे सुधीर तेलंग, समता बोरेकर, किंशुक चौहान और दुर्गेश नंदिनी चौधरी। इंदौर के सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।